કોટામાં પૂજ્ય ભાઈશ્રીનું તારીખ 3/3/82 સમયસાર ગાથા 69-70 ઉપર પ્રવચન.
સમય નામનો ઉદાર જાણે છે અને પરિણમે છે, બસ બે જ ભાવ એનામાં છે, જાણવું ને પરિણમ. પરિણમે કેમ લીધું, પરિણામે કરે કેમ લીધું, પરિણામ પર્યાયથી જો તો પરિણમી જો, સ્વયં પરિણામીને કોણ પરિણમાવે? સુખ ગુણ છે આત્મામાં, વિકાર બધા જીવ માત્ર પાસે, અને અનાદિકાળથી પર્યાયમાં સંસારી જીવને દુઃખ છે પર્યાયમાં. હવે એ જે દુઃખ પ્રગટ થયેલું છે એનો કરનાર સુખ નામનો ગુણ નથી, કેમ કે સુખ નામનો ગુણ દુઃખને શા માટે કરે? પોતાનામાં થતી પર્યાય જે પોતાનો પુત્ર છે એને દુઃખી કેમ કરે? માટે સુખ નામનો હું એ દુઃખની પર્યાયનો કરનાર નથી. એમ જયારે જાણવામાં આવે કે હું દુઃખનો કરતા છું ન ભોગતા, એમ હું તો સુખમય છું, હું સુખમય છું એમ વિચાર કરીને જ્યાં સુખમય આત્માનું અવલંબન કરે ત્યાં દુઃખ પર્યાયમાંથી ટળી જાય છે. જ્ઞાન હું અજ્ઞાનની પર્યાય કરતો નથી, ચારિત્ર હું રાગને કરતો નથી, શ્રદ્ધા હું મિથ્યાત્વની પર્યાય કરતો નથી. પણ જ્યાં સુધી આ સ્વભાવનું જોર નથી આવતું, અવલંબન નથી આવતું અને કરતા પણ ઉભા થાય છે, એ કરતા બુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી દુખાવ્યા કરે છે. કરતા પણ આની માન્યતા છે. ભગવાન આત્મા તે રૂપે પરિણમતો નથી, સદરૂપો ન ભવતી, માટે તે તેનો કરતા નથી. આમ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ કરતા અથવા નાયકનું લક્ષ કરતા પર્યાયમાં દુઃખ ટળી જાય છે, પછી પર્યાયમાં દુઃખ આવતું નથી. પર્યાયમાં દુઃખ ક્યાં સુધી આવે છે કે દુઃખનો હું કરનાર ને હું વેદનાર છે, દુઃખ મારું છે, દુઃખ મને થયું, એમ દુઃખમાં મમતા છે ત્યાં સુધી દુઃખ છે. સુખ હોય આત્માનું અવલંબન લીધું જ્યાં પર્યાયમાં દુઃખ ક્યાં છે? દુઃખનું કરતા પણ ઉભા છે, એ દુઃખનું દુઃખ દુઃખનું કારણ પર્યાય દ્રષ્ટિ. શાંતિભાઈ કે આટલો વિચાર કરીએ કે હું સુખમય છું ત્યાં તો પર્યાયમાં દુઃખ ઘટવા મળે છે, તો કયું દુઃખ જો ઘટવા મળે તો એ પ્રમાણ છે કે આત્માનો વિચાર કરવા માત્ર દુઃખ જો ગળતું હોય તો આત્માનો અવલંબન કરતા દુઃખ ટળી જાય, એ પ્રમાણ છે. અનુભૂતિ સિદ્ધ થાય ગમે એવું દુઃખ હોય, અને જગનાયક ને યાદ કરો તમે, અરે ભગવાન આત્મા નાયક છો, આત્મા શું કરી રહ્યો છું, જાણનાર છું, ઉભરો બેસી જાય, કસાઈ નો ઉભરો બધો બેસી જાય. બીજો તો કોઈ ઉપાય નહીં, જ્યાં સુધી ઉપયોગ આત્મા ન લાગે ત્યાં સુધી સ્વભાવ જેવો છે એનો વિચાર કરતા દ્રઢતા થાય છે, એકદમ દ્રઢતા વધી જાય છે. જેમ જેવો તમે વિચાર કરશો એવો તમને આત્મા ભાસવા લાગશે, બધા એવું ભાસવા લાગશે કે પેલો આવો ભાસતો નતો હવે આવો ભાસે, એમ તમને અમુક પ્રકારનો અનુમાનમાં ખ્યાલ આવશે.
ડેવિએશન છે દ્રષ્ટિ જે પર્યાય ઉપર હતી, દુઃખમાં હતી, એ દ્રષ્ટિ નિવેદ કરીને તમે આપણા ઉપર લઈ લીધી.
હવે પર્યાય પરમાથી સુખ મને આવે છે એવી ભ્રાંતિ છોડે છે અને હું તો સુખમય આત્મા છું, તો ત્યાં પર્યાય પરનું અવલંબન લેતી હતી, પર્યાય સુખ સ્વભાવે આત્મા નું અવલંબન લેવા ગઈ. દુઃખ ની રચના એ કોઈની કરી નથી, તારું હું દુઃખ ની રચે જ નહીં, દુઃખ ને રચે જ નહીં, એવો સ્વભાવ જ ન હોય. સ્વભાવ વિભાવ ને રચે જ નહીં, સ્વભાવ વિભાવ ની રચના કરે તો સ્વભાવ રહેતો નથી. વિભાવ તો વિભાવ છે પણ સ્વભાવ વિભાવ થઈ જાય, સ્વભાવ વિભાવ ને રચે. સ્વભાવ ઉષ્ણતા ની રચના સી રીતે કરે છે? શીતળ સ્વભાવ ઉષ્ણતા ને રચે, શીતળતા નો નાશ થઈ જાય તો રચે ને, એ રૂપે થાય તો રચના કરે ને,
કદી તે થતું નથી, માટે
માટે રચના કરતા બા બધી જગ્યાએ લગાવી બધી જગ્યાએ. સ્વભાવ વિભાવ ને સી રીતે રહે છે, આત્મા વિખ્યાત ની રચના સી રીતે કરે, શુદ્ધતા અશુદ્ધતા ને સી રીતે રહે, સુખ નામ નો ગુણ દુઃખ ને શા માટે રહે. હું રચનાર ભાગતું હતું, પર્યાય માં અહંબુદ્ધિ થતી હતી, હવે દ્રેવ માં અહંબુદ્ધિ આવવા માંડી. સ્વભાવ વિભાવ ને કેવી રીતે કરે? પરિણામી ભાવ ઉદય ભાવ ને કેવી રીતે કરે? તો પરિણામિક નું પરિણામિક પણ ના
વિરુદ્ધ
થઈ જતા અશક્ય છે. કાં તો પર્યાય પર્યાય ને કરે છે અને કાં પર્યાય ને ભૂતકલ રચે છે જૂના કર્મો, બસ આ બે શૈલી છે. ઓલી કઠણ પડે એટલે પર્યાય પર્યાય રચે એટલે હોય કે કોઈ વાંધો વાદ વિવાદ ચડી જાય, આમાં કોઈ ના પાડે, એટલે પાઠ તો ચોખ્ખો છે. એ તો રાગ છે ભૂતકલ રચે છે, અરે શુદ્ધ પર્યાય નું રચનાર ભૂતકલ છે એમ લેવું આ કારણ. કર્મ ઉપાધિ થી જનિત મૂળ પર્યાય થી વ્યતિરિક્ત આત્મા આત્માને ઉપાધિ છે. મેં એમ કહ્યું કે ચારે ભાવો કર્મ જનિત ભાવ, કર્મ નવકર્મ નવકર્મ જનિત ભાવો એનાથી જન્મેલા, આત્મા એને જન્મ આપતા નથી. પણ થાય એનું કરવું ન હોય ભાઈ, થાય છે પર્યાયો તો થયા જ કરે, તમે થાય એનું કરવું ન હોય, થવા યોગ થાય છે બસ, થવા યોગ થાય છે, ન થવા યોગ થાય છે એમ પણ નહીં, આત્મા એને કરે છે એમ પણ નહીં. ત્યારે સર્વજ્ઞ ભગવાન પર્યાયો સત્પણો અને દ્રવ્યનો વકરતા પણ એક સાથે ત્રણ જ્ઞાન માને, દ્રવ્યનું અકર્તા પણ, પર્યાયનું સત્પણું અને સર્વજ્ઞનું સર્વજ્ઞપણું. ત્યારે એ સર્વજ્ઞને જાણ્યા કહેવાય. સર્વજ્ઞને ક્યાં માને છે? પર્યાયનો કરનાર છે એ સર્વજ્ઞને માનતો નથી. પર્યાયની જો દ્રવ્ય કરે તો ગમે તે રીતે પોતે ઈચ્છા પ્રમાણે કરી શકે પર્યાયની, તો સર્વજ્ઞ ભગવાન ખોટા ઠરે, એને ખોટા ઠરાવે, કરતા બુદ્ધિ વાળો સર્વજ્ઞને ખોટા ઠરાવે.
સર્વજ્ઞ પણ કરતા પણ થઈ જાય છે ને, બધી રીતે ભાઈ ખોટો થશે, સર્વજ્ઞ નો સ્વભાવ જ હતો.
એવું પરમાત્મા છે જે સમયે જે આત્માની જે ગુણની જે પર્યાય થવાની છે તો થાય, ને તો પહેલેથી જ્ઞાનમાં આવી ગયું છે, બરાબર છે. હવે આ આત્મા કહે છે હું મારી ઈચ્છા પ્રમાણે મારા પુરુષાર્થથી ગમે તે પર્યાય રચી શકું છું, પાપને છોડી શકું છું, પુણ્યને કરી શકું છું, પુણ્યનો ત્યાગ કરી ત્યાગભાવ કરી શકું છું, એવી કર્તૃત્વ બુદ્ધિ પર્યાયમાં છે. એને સર્વજ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનને ઉડાવ્યું, એવડીને માનતો નથી કરતા બુદ્ધિ વાળો. દ્રવ્ય કરતા છે અને કરતા નહીં, એટલે જીવ તત્વ સંબંધિત ગુણ પર્યાયની સત સ્વાધીનતા રાખીની એ પર્યાય સંબંધની ગુણ પરાધીન કરી પર્યાય સતહેતુક ન રાખે અને કેવું ભગવાન સ્વીકાર થવા યોગ થાય છે. આજે તો રાજકુમારનું છે ને, આ સુખ ગુણ દુઃખ ને ન કરે એટલું મત ભાઈ, અને એકદમ ન્યાય કરે છે કે હું ઊંઘા દુઃખ ને કરું, અને એવો શું કૌક ચડી ગયો કે હું દુઃખ ને કરું, એવો ધંધો કોણ કરે દુઃખ ને કરે? ઈચ્છા કોઈ તો એનો અર્થ છે પિતા પુત્ર દુઃખી કરે છે, પિતા તો દ્રવ્ય છે, પર્યાય એના પુત્ર છે, તો પિતા પુત્રને દુઃખી કરે છે પણ એ કરતો જ નથી, પછી ક્યાં પ્રશ્ન છે? એ પર્યાય પર્યાયે દ્રવ્યનો સ્વીકાર કર્યો નથી, અકર્તા માટે પર્યાયમાં દુઃખ આવે છે. પર્યાયે દ્રવ્યનો સ્વીકાર કર્યો નથી કે હું સુખમય છું, હું સુખમય છું એવું સ્વીકાર કરવા જાય ત્યાં દુઃખ થઈ જાય, એ દુઃખનો વ્યય થઈ સુખની પર્યાય ઉત્પાદ થઈ અને સુખ સ્વભાવી આત્મામાં અભેદ થઈ જાય, દુઃખનો વ્યય થઈ સુખ પર્યાયનો ઉત્પાદ થઈ અને સુખ પર્યાય જે ઉપજતી પર્યાય છે એ સુખમય આત્મામાં આશ્રય કરે તો એમાં લીન થઈ જાય, અન્ય પણ થઈ જાય. પર્યાય સુખને માટે નિમિત્ત અવલંબન લે. હવે પર્યાય દ્રવ્ય નો અવલંબન લેવા, હવે હું તો સુખમય છું, જે ભાવ આવ્યો ને એ પર્યાય માં આવ્યો. હું સુખમય છું એવો ભાવ દ્રવ્ય માં આવતો નથી, ભાવ દ્રવ્ય નો નથી, દ્રવ્ય માં નથી આવ્યો. પર્યાય માં એમ આવ્યું, અરે હું તો સુખમય છું, તો પર્યાય સુખમય દ્રવ્ય નો અવલંબન લીધું. હું પણ સુખમય હું છું ને, પેલા પર્યાય દ્રષ્ટિથી હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું, તો પર્યાયમાં હું પણ આવતો હતો ને, પર્યાયમાં દુઃખ તો હતું, હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું, દુઃખ ક્યાંથી ટળે? હવે પર્યાય એમ જાણે છે, અરે હું તો સુખમય છું. ત્યાં પર્યાય સુખ સ્વભાવે આત્માનો અવલંબન કરે, દુઃખ ટળી જાય.
પર્યાય કા અગર ઇધર સે ઇધર અવલંબ લે લે તો કોઈ દુખી
નહીં.
પર્યાય કી તરફ લક્ષ જાયગા તો પછી માનતા કે પર્યાય કરી દેશે ઇધર હો તો બરાબર છે, કોઈ દુઃખ નહીં.
બાદ મેં પર્યાય મેં દુઃખ સુધો તો નહીં મિલે,
નહીં મિલે વો જબ જો ઇધર આ ગઈ તો મેં કાન નહીં કર,
મને બોલ સુખ કા કરી લે,
તો તો છોડી દિયા, વો તો ગઈ થી
ગઈ
ગઈ
ગઈ.
એ પર્યાય બહાર હતી, ઘેરે આવી ગઈ, દુઃખ જ દુઃખ દેખાઈ ગયું.
બસ આવા વૈજ્ઞાનના વિચારથી જીવને સ્વભાવનો પક્ષ આવે છે, રહેવાનો નિષેધ આવ્યો ને, સ્વભાવનો પક્ષ દૃઢ થતો. દુઃખમય છું ને દુઃખમય નથી, જ્ઞાનમય છું, રાગમય નથી. નિશ્ચયની ના પક્ષવાળાને વ્યવહારનો નિષેધ આવે, પક્ષાતિક્રાંત થાય પછી ખલાસ, કઈ બીજી નિષેધ નથી.
પરિણામ હોતા હૈ તો ઉસકે સાથ તો એક મેક રૂપ સંબંધ હૈ, તો વો તો સ્વભાવ બુદ્ધ ક્રિયા હૈ. આત્મા કા જ્ઞાન, આત્મા કી પ્રતીતિ, શુદ્ધાત્મા કા આચરણ, વિતરાગી ચારિત્ર, વો તો નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ હૈ. વો તો આત્મા કા કર્મ યાને કાર્ય હૈ, જો કાર્ય સે આત્મા કો સુખ મિલતા હૈ. ऐसा तो स्वभाव है कि आत्मा कर्ता ने ज्ञान कर्म, वो तो स्वभाव क्रिया है. मगर इसे दुनिया तक चला था. अभी आगे भूल बताते आचार्य महाराज, इसी प्रकार जब तक यह आत्मा, इसी प्रकार यानी आत्मा कर्ता, आत्मा का ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, आत्मा का कर्म, वो तो सही है, व्याजबी है, वो तो स्वभाव बुद्ध क्रिया है, उसका तो निषेध है नहीं. इसे इसी प्रकार जब तक यह आत्मा जीने, यानी आत्मा ने आत्मा को और क्रोध को संयोग से संबंध है, जैसे आत्मा और क्रोधादि आत्माओं में भी अपने अज्ञान भाव से अभी भूल जाते हैं कि आत्मा शुद्ध चिदानंद आत्मा चैतन्यमय है और उसके साथ अनादि काल से क्रोधादि आचरणों का संयोग संबंध है. आत्मा का ज्ञान के साथ तो तादात्म्य संबंध है. इससे शक्कर हो शक्कर शुगर खांड, उसके साथ उसका मीठापना स्वीटनेस गड़ा भाव, उसके साथ तो द्रव्यों और पर्याय का तादात्म्य संबंध है. वो तो टाल सके नहीं है, टल ही सके नहीं, और नाश होता नहीं है. इसे ये शुगर के साथ खांड शक्कर के साथ मेल का जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध नहीं है, संयोग संबंध है. जो संयोग संबंध है तो वो निकल सकता है. कंदोली लोग हमारे वहां पतासा बनाते हैं तो ये शक्कर को पानी डालकर उगाड़ता है, उबालता है, तो मेल तो निकल जाता है, छूट जाता है. मेल का अभाव होने से शक्कर का और शक्कर की मिठास का नाश होता नहीं है. क्योंकि संयोग का अभाव होता है, स्वभाव का अभाव होता नहीं है. तो आत्मा के साथ एक क्रोध मान माया लोभ का, राग द्वेष मोह का, शुभ अशुभ भाव का, व्रत अव्रत का परिणाम जो है, जो आश्रव तत्व है, आश्रव का संयोग संबंध है आत्मा के साथ, तादात्म्य संबंध नहीं है. ऐसे जो आकुल का परिणाम में होती है दुख, वो दुख का और आत्मा का संयोग संबंध है. ये एकत्व रूप नहीं है, एकाकार नहीं है, एक चीज नहीं है. एक आत्मा और एक आश्रव मलिन भाव, एक पवित्र परमात्मा अपवित्र आश्रव परिणाम, दो का संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है, एक रूप हुआ नहीं है. आत्मा के साथ ऐसा ज्ञान आनंद का एक रूप तादात्म्य संबंध है, सदाकार है. ऐसे आत्मा के साथ अनादि काल से आश्रम का संयोग सिद्ध शब्द है, संयोग है, संयोग शब्द है, उसमें दो प्रतीत हो जाता है, एक आत्मा और एक आत्मा के साथ संयोग हुआ, समय समय पर संयोग नया होता है, स्वभाव नया नहीं होता है, संयोग तो नया नया होता है आश्रम का, तो आत्मा जिन्हें संयोग से संबंध है जैसे आत्मा और प्रोतादि आश्रम भी, जैसे आत्मा और ज्ञान के अंदर तो तादात्म संबंध है, ऐसा आत्मा और रात के साथ संयोग संबंध होने पर भी अपने अज्ञान भाव से वो तादात्म मान लेता है। अग्नि और उष्णता उसका तो तादात्म संबंध है, मगर अग्नि के साथ साथ जो राख ऊपर होती है, राख कहते हैं क्या कहते हैं, राख होती है उसका संयोग संबंध है, राख तो निकल जाती है, राख दूर होने से उसका जो उष्णता स्वभाव है उसका नाश होता नहीं है, ऐसे कपड़े की साफ उसकी स्वच्छता निर्मलता वो कपड़े के साथ तादात्म संबंध है, वो निकाल सकते नहीं, कोई साइंटिस्ट निकाल सकते नहीं है, मगर कपड़ा जब मेला होता है वो मेल तो संयोग संबंध है, तादात्म संबंध
नहीं
है, जो तादात्म संबंध हो तो मेल निकालने से कपड़ा का भी नाश हो जाए, मगर ऐसा किसी का अनुभव में आता ऐसे आत्मा और उसके साथ मलिन परिणाम का संयोग संबंध है अनादिकाल से। तो अपने उसमें अपने अज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ, विशेष यानी तफावत जुदाई नहीं जानता हुआ अज्ञानी आत्मा अपने अज्ञान से कर्म का उद्देश्य नहीं, दर्शन भोग का उद्देश्य नहीं, अपना अज्ञान से ऐसा लिखा है। अपने अज्ञान भाव से अज्ञान खड़ा करता है, संयोग शब्द को तादात्म्य शब्द मानता है, संयोग को संयोग मानता नहीं है, संयोग को स्वभाव मानता है, दया दान करुणा कोमलता का परिणाम जो का परिणाम है वो है संयोग, मानता है स्वभाव है विभाव, मानता है उसको स्वभाव, तो अपने अज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ यानी उसका तफावत जुदाई लक्षण भेदे भेद होते होने पर भी वो जुदा है ऐसा नहीं ख्याल में आता, ज्ञान भिन्न और राग भिन्न ऐसा ख्याल में आता, आत्मा और आत्मा में हुआ राग तो राग आत्मा से कैसे भिन्न हो सकता है, आत्मा और आत्मा में होता है राग, वो आत्मा में हुआ राग वो आत्मा में से कैसे भिन्न हो सकता है, भैया वो पर्याय में राग है, पर्याय को उच्चार से आत्मा कहा जाता है, निश्चय से तो आक्रव तत्व है, मलिन तत्व है, साथ साथ में एक शुद्धात्म तत्व साथ साथ में रहता है, तो साथ में है जीव और आक्रव संयोग संबंध है, अपना अज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ जुदाई तफावत न जानता हुआ न मानता हुआ अपना अज्ञान भाव से जुदा होने पर भी उसको एक मानता है, दो तत्व को एक मानता है, दो को दो नहीं जानता है नहीं मानता है, अज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ उनके भेद को नहीं देखता, उनकी जुदाई को नहीं देखता कि मैं ज्ञानमय हूं रागमय, रागमय आश्रव तत्व है मैं ज्ञानमय हूं। जो आपूर्ता है वो आश्रव तत्व है, मैं तो सुखमय हूं। मैं दुखमय हुआ दुख का संयोग है, मगर मैं दुखमय हुआ नहीं हूं। दुखमय मान लेता हूं, मान लिया तो आत्मा दुखमय हो सकता नहीं। इसी मान्यता हो ऐसा जो स्वरूप बन जाए तो अज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञान हो गया। समझ में आया कि आत्मा स्वभाव से ज्ञानमय है, उसका परिणाम में राग है, आश्रव तत्व मलिन भाव है, दुख भाव है, मगर आत्मा के साथ उसका संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। मान लिया है कि दुख और आत्मा एक चीज है, राग और आत्मा एक चीज है, मानता है। जैसी उसकी मान्यता है, जैसे देह और आत्मा को एक माने, देह और आत्मा को एक मानता है अज्ञानी, मान्यता करता है, श्रद्धा में लिया है, मगर जीव और अजीव तत्व एक हो सकता लेकिन काल में हो सकता नहीं है। ये शुद्धात्म तत्व और अशुद्धात्म आश्रव तत्व संयोग संबंध है, साथ साथ में है, एक रूप नहीं है। जिसको अज्ञान भाव से दो तत्व जुदा होने पर भी उसका भेद ज्ञाने जुदा ख्याल में आता नहीं है, तो वो भेद को नहीं देखता। तब तक अज्ञानी कहां तक रहता है कि आत्मा और आश्रव की जुदाई नहीं जानता है, कहां तक अज्ञान है। जैसे आत्मा जुदा भीन है, निराग भीन है, ऐसा जब भान हो जाता है तब आत्मा का आश्रय लेकर उसकी एकता बुद्धि टूट जाती है। राग का स्वामी बनता नहीं है, राग का कर्ता बनता नहीं, ज्ञान का कर्ता बना तो राग का कर्ता अपना छूट जाता है। ये तब तक निशंक या निशंक हो गया है, आत्मा और लोग जुदा है वो बात छोड़ के सर्वज्ञ ने फरमाए है। सुन, संतों ने लिखा है शास्त्र में कि सुख स्वभावी भगवान आत्मा और आश्रव तत्व में दुख है, दुख नहीं है ऐसा नहीं है, दुख भी है और सुख स्वभावी आत्मा भी है, उसको एक मानना वो अज्ञान है और जुदा मानना वो ज्ञान है। जुदा है ही, जुदा करना नहीं है, जुदा ही है दो तत्व, उसको अपना भ्रांति से अज्ञान से जुदा होने पर भी एक रूप मानता करता है, वो संसार का बीज है, वो मिथ्या ज्ञान है, भेद को नहीं जानता देखता, तब तक निशंक या क्रोधादि में अपने पने से प्रवर्तता है, शुभाशुभ भाव मेरा है, अपनापन उसमें लगाता है, ये मेरी चीज है, मैं पना मानता है उसमें, मैं कोई पाप से भिन्न चैतन्य प्रभु आत्मा हूं उसकी तो दृष्टि करता नहीं है, वेद ज्ञान करता नहीं है, एकत्व तो करता है, एकत्व तो का विभक्त करने की कला वो जानता नहीं है, तो एक हुआ नहीं है, एक जैसे लगते हैं भ्रांति से, मगर आत्मा और राग, आत्मा और दया का परिणाम, आत्मा और अहिंसा का परिणाम, आत्मा और ब्रह्मचर्य का शुभ भाव एक होता, ब्रह्मचर्य का परिणाम भीन है, अनेक ज्ञानानंद परमात्मा भीन है, बीच के अंदर लकीर है, चौड़ है, शांत है, तो एक हुआ नहीं, दो के बीच में संधि शांत है, शांत समझे संधि, ये संधि नहीं है, संधि है, एक हुआ नहीं है, मगर इतना नजदीक है, इतना जितना राग नजदीक है कर्म ने नो कर्म शरीर तो दूरवर्ती है, क्योंकि वो तो अपना द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है, वो तो दूरवर्ती है। उसका भेद ज्ञान तो आसान है, उसका भेद ज्ञान तो आसान है, क्योंकि वो प्रकट रूप से भिन्न दिखता है। जीव चले जाता है, देह को जलाता है, छूट जाता है देह तो। मगर राग और आत्मा इतना नजदीक है, नजदीक का अर्थ एक नहीं है, भिन्न भिन्न है, मगर है नजदीक। यहाँ शुद्ध आत्मा है, और जो शुद्ध आत्मा का वर्तमान में ज्ञान दर्शन उपयोग प्रकट होता है, वहां राग की उत्पत्ति होती है। उसकी पर्याय में राग होता है, द्रव्य में राग नहीं है। तो राग जो आश्रव तत्व मलिन तत्व है और ज्ञानमय भगवान आत्मा है, वो उसके बीच में दान है। एक रूप हुआ, एक समय भी एक रूप हो जाए, तादात्म हो जाए, तो राग का अभाव होकर विद्राल दशा प्रकट हो सकती नहीं है। इसलिए राग का अभाव हो जाता है, विद्राल भाव की प्रकटता होती है। वो अनुभव से सिद्ध है कि राग भिन्न ज्ञान भिन्न है। मगर जहां तक ऐसा भेद ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तहां तक वो आत्मा रागादि में तन्मय होकर, तद्रूप होकर, तद्रूप लीन होकर अपने स्वभाव को भूलता है, अने राग में अपने पना की बुद्धि करता है, अज्ञान है, विषंतया क्रोधादि में अपने पने से प्रवृत्ता है। और वहां क्रोधादि में अपने पने से प्रवृत्ता हुआ, परिणमता हुआ, क्रोध मान माया लोक मेरा कर्म है, मैं उसका करता हूँ, ऐसे मान्यता कर रखी है, प्रवृत्ता है। तहां तक यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभाव भूत होने से, यद्यपि जो के क्रोधादि क्रिया का प्रभाव भूत होने से निषेध किया गया है, यद्यपि जो के क्रोधादि क्रिया उत्पन्न होती है उसमें सब विभाव ले लेना, क्रोधादि में सब विभाव, शोभ अशोभ सब ले लेना, कुछ पाप सब ले लेना, वो जो क्रिया होती है पर्याय में क्रोधादि की, वो प्रभाव भूत है, स्वभाव भूत नहीं है क्रिया। जो क्रिया से आत्मा को दुख का वेदन आवे, वो स्वभाव भूत क्रिया नहीं हो सकती है, वो विभाव भूत क्रिया है। लगता है स्वभाव भूत क्रिया, भगवान की भक्ति का राग आया, शास्त्र श्रवण का प्रशस्त राग आया, वो अपनी स्वभाव भूत क्रिया मान लिया, हे विभाव भूत क्रिया, हे प्रभाव भूत क्रिया। तो क्या नहीं सुनना, नहीं भगवान की भक्ति करना, नहीं भगवान का दर्शन करना, क्या करना? करना न करने की बात नहीं है, तत्व जैसा है ऐसा भिन्न भिन्न जानने की बात है, करने की बात नहीं है, रोकने की बात नहीं है, छोड़ने की बात नहीं है। दो तत्व भिन्न भिन्न है, उसको भिन्न भिन्न जानना और मानना वो धार्मिक क्रिया है, और एक मानना या धर्म की क्रिया है। क्या करना? भगवान की भक्ति छोड़ देना नहीं करना, पुण्य नहीं करना तो क्या पाप करना? करना न करने की बात नहीं है, वो तत्व का स्वरूप समझ ले कि वो प्रभाव भूत क्रिया है, स्वभाव भूत क्रिया नहीं है। उसका भेद ज्ञान करके अपना शुद्ध आत्मा का अवलंबन करने से अपने में सम्यक कृष्णांचार्य का परिणाम, जिसका नाम मोक्ष मार्ग है, एक करने जैसा। जहाँ तक वो दशा पूर्ण हो तहां तक साधक को पुण्य भाव आता है, पुण्य करता नहीं है वो। पांच महाव्रत का परिणाम साधक करता नहीं है, आ जाता है, उसको भिन्न जानता है, उसको इसके अंदर एकत्र बुद्धि होती है, वो आश्रव तत्व है नहीं। मैं जीव तत्व और जीव आश्रय से जो संवर निद्रा है वो मेरा परिणाम है, पर आश्रित राग मेरा नहीं, ऐसा भेद ज्ञान चालू हो जाता है। क्रोधादि क्रिया का प्रभाव होने से निषेध किया गया है। व्यवहार रत्न त्रय का परिणाम और भगवान आत्मा भिन्न भिन्न तत्व है। व्यवहार रत्न त्रय का परिणाम आश्रव तत्व है, संवर निद्रा मोक्ष तत्व नहीं है, वो प्रभावभूत क्रिया है। इसमें लिखा है आपका शास्त्र में वो बात लिखी है, हम तो नया दिगंबर है, आप तो सब पुराना जन्म दिगंबर है, समझे? तो आपका शास्त्र में ऐसा लिखा है, कुंकुंद आचार्य भगवान ने लिखा है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया। क्या कहा? ये व्यवहार रत्न त्रय का जो परिणाम प्रकट होता है वो प्रभावभूत क्रिया है, और निश्चय रत्न त्रय का परिणाम प्रकट होता है वो स्वभावभूत क्रिया है। आत्मा में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक प्रभावभूत क्रिया और एक स्वभावभूत क्रिया। जहां तक स्वभावभूत क्रिया नहीं प्रकट होती है तहां एकांते प्रभावभूत क्रिया मिथ्या दर्शनान चारित्र का परिणाम प्रकट होता है, और निषेध करने लायक है, वो आदर करने लायक नहीं है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं शांति से तुम सुन, ये प्रभु तेरी बात चलती है, प्रभु शांति से तुम तेरी बात चलती है। इधर भी कथा का मना है, बोर्ड है बार में, भी कथा करने की मना है, सकत धर्म कथा चलती है, आत्म कथा चलती है, तेरी कथा चलती है, मेरी कथा चलती है, ऐसा सुन लो। आचार्य भगवान फरमाते हैं कि वो प्रभाव क्रिया होने से निषेध किया गया है, सर्वज्ञ भगवान ने निषेध किया है कि वो करने लायक जो क्रिया से आत्मा दुखी हो वो क्रिया का उद्देश्य सर्वज्ञ भगवान दे सकते हैं कि तू शुभ भाव कर तो सुखी होगा तू, वो उपदेश वितराग का नहीं है, वितरागी वाणी नहीं है, वो साधक की वाणी नहीं है। जो क्रिया करने से आत्मा दुखी हो, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव दो ही प्रभाव की क्रिया है, उसका अनुभव उसका वेदन दुखमयी होता है। तो दुख की दुख जिसका फल में दुख आवे वो क्रिया करने का उद्देश्य वितरागी संदेह है, तो निषेध किया गया है। तथापि हे तो निषेध करने लायक छोड़ने लायक है, शुद्ध आत्मा का ग्रहण पूर्वक उसका त्याग करने की है। तथापि जो भी उस स्वभाव को धोने का उसे अध्यास होने से एक विभावभूत क्रिया प्रभावभूत क्रिया दुखदायक है, पुण्य पाप का परिणाम, मगर अज्ञानी को अनादिकाल से वो प्रभावभूत होने पर भी वो क्रिया स्वभावभूत होने की भ्रांति हो गई, अभ्यास हो गया अधिष्ठान हो गया है। एक शुभाशुभ क्रिया प्रभावभूत है, आश्रव तत्व है, समर तत्व नहीं है। पुण्य रुक जाए ने पुण्य का परिणाम, पाप रुक जाए ने पुण्य का परिणाम आवे, उसका नाम संवर नहीं है। पुण्य और पाप पाप की एकता बुद्धि छूटती है, दृढ़ स्वभाव में एकत्व परिणाम होता है, तो वितराग भाव प्रकट होता है, उसका नाम संवर है। संवर का परिणाम में राग नहीं है, संवर का फल दुख नहीं है, संवर निद्रा का फल दुख सुख है, आत्मिक सुख है। होने का उसे अज्ञात होने से अज्ञात हो गया, अभ्यास अभ्यास में अज्ञात हो गया। जैसे मनुष्य हूं मनुष्य हूं मनुष्य हूं तो श्रद्धा में मनुष्य हुए था गया, ज्ञान में मनुष्य हुए था आ गया। ऐसे अनाधिकार से अपने स्वभाव को भूलकर अपने अज्ञान से जो प्रभाव भूत किया है उसको स्वभाव भूत किया मान लिया है तो उसमें निषेध बुद्धि आती नहीं, उसमें उपाधि बुद्धि आती, करने लायक मानता है। होने से क्रोध रूप प्रणमित होता है, राग रूप प्रणमित होता है, मोह रूप प्रणमित होता है, राग द्वेष मोह रूप प्रणमित होता है। प्रणमन बदलता ही नहीं है, जो परिणाम को स्वभाव क्रिया मानते है उसको छोड़ने की चेष्टा करते नहीं है तो राग द्वेष मोह पे अनाधिकार से प्रणमित करता है। वेद ज्ञान का अभाव है, आत्मा और राग करने जैसी चीज है उसको तो ग्रहण करता है, अधर्म का तो ग्रहण करता है, अधर्म का ग्रहण करने से धर्म का त्याग हो जाता है। इसमें लिखा है धर्म का त्याग करता है समय समय पर, हो समुचे की बात नहीं है, एक एक समय पर ग्रहण त्याग की प्रवृत्ति उसकी होती है अज्ञानी। धर्म का त्याग अधर्म का ग्रहण इसमें लिखा है। ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था का त्याग, यानी अवस्था प्रकट होती है और बाद में उसका त्याग करता है ऐसा नहीं है। उसकी उत्पत्ति का न होना सम्यक दर्शनान चारी प्राणी मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति का न होना उसका नाम त्याग है, धर्म का त्याग है। और विद्या दर्शनान चारी प्रति पर्याय का वो ग्रहण करता है, अधर्म का ग्रहण करता है तो धर्म का त्यागी है। क्या कहा उसमें लिखा है समयसार, सामने समयसार शास्त्र नहीं आपके पास है, घर पर जाके पढ़ना। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें लिखा है अनाधिकार से अपने अज्ञान से राग मेरा है, राग मेरा कर्म है, मैं उसका करता हूँ, राग में ममत्व करता है। राग में ममत्व करने से ममत्व भाव का ग्रहण करता है, निर्ममत्व विकराल भाव का समय समय पर त्याग करता है। एक का ग्रहण तो दूसरा का त्याग हो जाता है, एक का ग्रहण कर लिया श्रद्धा ज्ञान में तो आपको आप विकराल भाव का त्याग हो गया, प्रगति नहीं होता है वो, तो परिणाम प्रगति नहीं होता है। तो प्रगट नहीं होना उसका नाम धर्म का त्याग करता है और अधर्म का ग्रहण करता है और मानता है कि मैंने धर्म किया, कुछ धर्म तो करता हूं, मेरी शक्ति अनुसार थोड़ा तो धर्म करता हूं। मेरे वडवाओ पिता तो बहुत धर्म करता थे, थोड़े धर्म करते, ज्यादा धर्म करते नहीं, हम देव दर्शन करते करने जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी में लीलोत्री हरा खाता नहीं, रात्रि को भोजन करता नहीं है, उपवास आदि भी करता हूँ, यात्रा भी जाता, थोड़ा मैं धर्म करता है, बहुत तो धर्म प्रवृत्ति वाला हूँ, ग्रस्त हूँ मैं, ज्यादा तो धर्म करता नहीं हूँ। धर्म नहीं करते होते छते मैं धर्म करता हूँ वो तो बड़ी से बड़ी भ्रांति विचार तो है, ये अलौकिक बात है भैया। किसने कहा कि अलौकिक बात है, कठिन पड़े जरा कठिन तो पड़ती, अपनी जो मान्यता है ना पुरानी मगर वो किसी का घर की बात नहीं है, वो सोंडगढ़ की बात नहीं है, सोंडगढ़ का संत की बात नहीं है, आपका संत की बात है। आपका संत जो कहते हैं वो मैं कहता हूं, संत तो आपका है ना, कुनकुन आचार्य आदि दिगंबर मुनि। तो भैया एक भव है ने धर्म करने के लिए है, धर्म नहीं करे अधर्म करे, अधर्म को धर्म मानना हो मिथ्या है, अधर्म को धर्म मानना हो मिथ्या है, अधर्म को अधर्म जानना हो मिथ्या नहीं है, अधर्म को अधर्म जानना, धर्म को धर्म जानना, जीव को जीव जानना, मोक्ष को मोक्ष तत्व जानना, वो धर्म नहीं है। मगर अधर्म तत्व को धर्म मान गया और धर्म मानकर वो क्रिया करता है तो छूटने का अवकाश होता। इसमें लिखा है कि ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन था, ज्ञान और वैराग वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का ज्ञान और राग का विरक्तपना, उदासीनपना, लोकालोक से उदासीनता, उसका नाम वैराग है। राग रहित की आत्मा की स्थिरता का, वितरागी चारित्र का परिणाम का नाम वैराग है। कषाय की मंदता का नाम वैराग नहीं है। कषाय की मंदता संसार का कारण है, वैराग तो मुख का कारण है। और वैराग के साथ आत्मा का जो अनुभव होता है उसका नाम ज्ञान है। शास्त्र का ज्ञान ज्ञान नहीं, कषाय की मंदता वैराग नहीं, व्याख्या या की जुदी अलग है। संतों की वाणी है वो, अनुभवी की वाणी है कि आत्मा का ज्ञान अतीन्द्र ज्ञान, जो ज्ञान में स्वसंवेदन ज्ञान के साथ आनंद का वेदन आवे, इसका नाम ज्ञान है। और आत्मा की अंदर जितनी स्थिरता हुआ और अनंतानुमंदी राग का अभाव हुआ, इतने वितराग का स्थिरता, इसका नाम वैराग है। राग का व्यय होकर वितराग भाव प्रकट होना, उसका नाम वैराग है। साधक को ज्ञान और वैराग एक साथ रहता है। इसका ज्ञान तो बढ़िया है मगर उसके पास वैराग ऐसा नहीं होता है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास वैराग होता ही है, जिसके पास वैराग है उसके पास आत्मा का ज्ञान होता है। ऐसी उदासीन जो ज्ञान और वैराग ज्ञाता दृष्टा की अवस्था को छोड़ दिया और राग का मैं करता हूं, वो अधर्म बुद्धि हो गई। ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था का त्याग करके, समय समय का हिसाब है, वो एक एक समय का हिसाब है, समय समय पर धर्म का त्याग और अधर्म का कर रहा है वो आत्मा। वो अधर्म का त्याग करने जैसी है चीज, धर्म का ग्रहण। वो धर्म का ग्रहण कैसे हो सकता, वो बात आचार्य महाराज फरमाते हैं कि सुंदरा भैया शांति से तेरी बात है, वो तेरा स्वभाव की बात है। अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार ऊपर था, क्रोधादि व्यापार प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है, वह करता है। क्या फरमाते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो है ज्ञाता दृष्टा, उद्धिकार तो ज्ञायक है और ज्ञायक के आश्रय से ज्ञाता दृष्टा का जो प्रणमन होता है वो ज्ञान वैराग है। इसी संवर निद्रा की क्रिया को तो छोड़ता है और आश्रव बंध की क्रिया को ग्रहण करता है। तो ऐसी जब स्थिति है तब आत्मा वो भाव रूपे परिणमता है, तो जहां तक परिणमता है तहां तक वो प्रतिभास होता है वह करता है। उस परिणाम मेरा है ऐसा प्रतिभास होता है यानी ज्ञान होता है तो उसका नाम कर्ता कहा जाता है, वह करता है। और ज्ञान भवन मात्र रूप प्रवृत्ति से भिन्न, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम से भिन्न, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम से संयुक्त युक्त, और क्रियमान रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभास होते हैं। ये राग द्वेष वो मेरी क्रिया है, वो क्रिया का स्वामी बन गया। विभाव भाव की क्रिया जो होती है, एक विभाव भाव क्रिया है, एक स्वभाव क्रिया है और एक निष्क्रिय तत्व है। जीव निष्क्रिय तत्व है, संवर निद्रा और मोक्ष की क्रिया स्वभावत है, और कुल पाप आश्रम की क्रिया विभावभूत है। पुण्य पाप आश्रम बल विभावभूत है, विभावभूत क्रिया है। संवर निद्रा मोक्ष स्वभावभूत क्रिया है, माने भगवान आत्मा निष्क्रिय है, वो तो दो क्रिया से पार है, नहीं है। इसका जब अवलंबन आत्मा निष्क्रिय का लेता है ज्ञान का, तब उसकी विभावभूत क्रिया छूट जाती है और स्वभावभूत क्रिया धार्मिक प्रकट होती है, अंतर में होते हुए प्रतिभासित होती है। ऐसे क्रोधादि वे कर्म है, मैं करता क्रोधादि मेरा कर्म, ऐसा उसको प्रतिभास होता है। स्वभाव तो है अकर्ता, स्वभाव तो है अकर्ता, ज्ञायक स्वभाव है, मगर वो मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा श्रद्धा ज्ञान स्वभाव को छोड़ देता है और राग की क्रिया का मैं करता हूं, तो वो अज्ञान भाव से विशेष अपेक्षा से विशेष में पर्याय में वो क्रोध का कर्ता बनता है, नहीं क्रोध उसका कर्म बन जाता है। सामान्य अपेक्षा से तो कर्ता जैसा का जैसा, फिर से सूक्ष्म बात आया कि अज्ञानी आत्मा अपना स्वभाव को भूलकर राग जो विभाव भाव है उसको स्वभाव क्रिया मानता है, तो उसका कर्ता बनता है, ओ विभाव भाव मेरा कर्म है, इसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बन जाती है। मगर वो राग का कर्ता बनता है, वो विशेष में ही कर्ता बनता है। सामान्य तत्व राग का कर्ता बन सकता नहीं, क्योंकि सामान्य तत्व निष्क्रिय होने से उसमें विभावभूत क्रिया भी नहीं है और स्वभावभूत क्रिया उसमें पूरा सूक्ष्म है। फिर से ये भगवान आत्मा का एक पहलू सामान्य तत्व है जो अनंत गुणात्मक है, अनंत गुण का पिंड, वो तो अनादि अनंत निष्क्रिय है। निष्क्रिय ने उसमें उत्पाद भेद की क्रिया ध्रुवे नहीं होती, उसे बाहर होती है, पर्याय में होती है। उत्पाद वही सक्रिय है, ध्रुव निष्क्रिय है। निष्क्रिय और सक्रिय दो मिलकर प्रमाण ज्ञान का विषय बनता है, और प्रमाण ज्ञान में से जहां तक आत्मा में ज्ञाता दृष्टा हूं उसको भूल जाता है, तो पर्याय में सक्रिय परिणाम होता है। पर्याय सक्रिय अनादि अनंत, सक्रिय यानी इसमें क्रिया होती है, क्रिया पर्याय की क्रिया होती है। पर्याय में सर्वथा अकर्ता ने निष्क्रिय नहीं है, कथनचित निष्क्रिय ने कथनचित सक्रिय, तो वो पर्याय में अपना स्वभाव को भूलकर आत्मा ज्ञान भाव से राग में अपनापन मानता है, तो तो विशेष में यानी पर्याय में वो अज्ञान में अज्ञान जनित पर्याय में आत्मा क्रोध का कर्ता में ओ मेरा कर्म ऐसे कर्ता कर्म की विभावभूत क्रिया क्रिया का कारण पर्याय में प्रकट हो जाता है। उस समय भी उस टाइम भी वो जो आश्रव प्रकट हुआ वो आश्रव का और आत्मा का संयोग संबंध है, तादात्म संबंध नहीं है। इसलिए वो परिणाम का आत्मा द्रव्य दृष्टि से तो करता रहता है मगर द्रव्य दृष्टि का भान नहीं है, इसलिए वो विशेष में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है विभाव। तो संयोग संबंध है, तादात्म संबंध नहीं है। आत्मा जो क्रोध को सचमुच करे एक समय करे तो सौ समय करना पड़े मगर पर्याय पर्याय का करता है, द्रव्य स्वभाव पर्याय का करता नहीं है। तो भी परिणामी की अपेक्षा से अकर्ता होने पर भी पर्याय धर्म का आरोप द्रव्य पर देने से आत्मा परिणाम का करता है, ऐसा व्यवहार नीचे कहा जाता है। तो ही छूटता है जो भगवान आत्मा सचमुच 320 का था है समय सार की, उसमें न्याय दिया है कि बंध का कारण भूत जो क्रिया है राग द्वेष मोह की, उसका आत्मा कर्ता क्यों बनता है। तो उसमें संस्कृत में लिखा है कि तदुपूर्ण भवती, जो ज्ञायक स्वभाव विकार वो वर्तमान क्षणिक जो विकार पर्याय में होता है वो रूप होता नहीं है। इसलिए सचमुच निश्चय नहीं से वो उसका कर्ता बन सकता नहीं है मगर वो परिणमता है तो व्यवहार नहीं से वो कर्ता कहा जाता, मगर अपना अकर्ता सुरक्षित रखकर व्यवहार नहीं से परिणमता है तो कर्ता कहा जाता। अभी टाइम हो गया 5 मिनट भाई साहब ने दादा स्पीकर का आत्मा की एक भूल रह गई है, वो भूल निकालने का उपाय इसमें है, भूल का नाश का उपाय इसमें करता कर विचार हो जाए। आत्मा स्वभाव से ज्ञायक होने से ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है। वो भी जो अपना स्वभाव को जानता नहीं है, ऐसे अज्ञानी प्राणी की अवस्था में अज्ञान ऐसा परिणमकार से हो रहा है कि मैं करता हूँ राजा जी, मेरा कार्य यानी कर्म है, कर्म अर्थात कार्य, इसी भ्रांति अनाधिकार से है। जहां तक वो कर्ता कर्म की बुद्धि रहती है मैं करता कुल पाप मेरा परिणाम कर्म शुभाशुभ मेरा कर्म, इसे जब भ्रांति रहती है कहां तक वो दुखी है आत्मा, चार गति का दुख होता है। तो इधर एक अज्ञानी के पास आचार्य भगवान ने किया अपना स्वभाव व्यायक है, तो ज्ञायक के आश्रय से जो ज्ञान भवन मात्र जो किया, जो ज्ञाता दृष्टारूप उदासीन किया अर्थात सम्यक दर्शनान चारित्र का परिणाम रूप इतरागी किया, उसको समय समय पर याद करता है,
और जो अपनी स्वभावभूत क्रिया नहीं है, विभावभूत क्रिया है रागादि की, वो निरंतर कर्ता बुद्धि से कर रहा है, तो इसके परिणाम में राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होती है, उसका फल आपको साधन को भोगता है। कर्ता भी है, भोक्ता भी वो है। वो बात जरा समझने जैसी है कि आत्मा अज्ञान भाव से राग का कर्ता और दुख का भोक्ता होता है। उसमें थोड़ी मार्मिक बात कहती है कि एक आत्मा का दो साइड है, दो बाजू है, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य का तो अनंत गुणात्मक जो आत्मा है, जो सदा से ज्ञानमय रहा है और अनंत का वो ज्ञानमय रहने वाला है, एक समय मात्र वो सामान्य परखा है, वो रागमय दुखमय हुआ नहीं है, होता नहीं है, होगा भी नहीं, एक सामान्य परखा ज्ञाय भाव है। एक दूसरा विशेष परखा उसका है पर्याय का, उसमें क्रिया होती है, सामान्य स्वभाव में क्रिया का अभाव है, वो निष्क्रिय है। विशेष वर्तमान जो परिणाम होता है वो सक्रिय है, पर्याय सक्रिय है, श्रेय स्वभाव निष्क्रिय है। पर्याय में क्रिया होती है, जिसमें क्रिया होती है उसमें फेरफार भी हो सकता है, जिसमें क्रिया होती नहीं है उसमें कुछ फेरफार का संभव ही। तो विशेष परिणाम में क्रिया है, तो क्रिया होने से फेरफार हो जाता है। अनादिकाल से जो मोहराज की उत्पत्ति होती है वो क्रिया है, विभावभूत क्रिया है, दुखदायक क्रिया है, विकृत क्रिया है, वो क्रिया पर्याय में होती है। तो वो पर्याय में क्रिया होती है, पर्याय पर्याय का कर्ता होने पर भी निष्क्रिय आत्म तत्व को अभेद उपचार से कर्ता कहा जाता है, कर्ता हो सकता नहीं। इससे क्या कहा, ये आत्मा है। देखो इसके लिए एक आधार 500 पाना पर है, बढ़िया से बढ़िया वो चीज है। देखो ये बात ऐसी है कि अज्ञान भाव से आत्मा राग का करता है, द्वेष का करता है और मोह का करता भी है। अज्ञान भाव से आत्मा करता है ऐसा कहा जाता है, तो वो करता सचमुच जो त्रिकारी सामान्य निष्क्रिय अकर्ता है, वो कर्ता स्वभाव छोड़ देता है और कर्ता बन जाता है, ऐसा है
नहीं।
तो कर्ता तो कहा जाता है कि कर्ता तो है ज्ञान भाव से राजदेश का, और दुख का भोक्ता भी है, जैसे सांख्य मत कहता है ऐसा है
नहीं, वो तो सरलता करता मानता है। जैन दर्शन तो कथनचित करता है, कथनचित अकर्ता, ऐसा क्या सवाल है? तो आत्मा अनादि काल से अज्ञान से राजदेश का कर्ता होता है, इसका क्या अर्थ? आत्मा कर्ता होता है, शब्द तो आया आत्मा कर्ता होता है। तो आत्मा जो त्रिकाली सामान्य ज्ञायक भाव से अवस्थित है, वो तो त्रिकाल करता है, वो कर्ता बनता
नहीं।
अकर्ता स्वभाव को छोड़कर राग का कर्ता बनता नहीं है, वो भी पर्याय में कर्तृत्व क्रिया होने से अपने स्वभाव को भूल कर वो पर्याय में राग का कर्तृत्व उत्पन्न होता है, विभाव भाव उत्पन्न होता है। तो अभेद उपचार से आत्मा को कर्ता कहने में आता है, सचमुच तो आत्मा कर्ता ही रहता है, आत्मा राग का कर्ता बनता नहीं है। तो आत्मा कर्ता बनता है, वो व्यवहार नहीं से कर्ता कहा जाता है, उपचार से कर्ता कहा जाता है। उसका खुलासा इसमें है कि इसलिए ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा, एक सामान्य ने एक विशेष, इतना तो जरूरी चीज है स्वरूप को समझने के लिए, इतना तो समझना चाहिए कि सामान्य ने एक सारा जगत के पदार्थ सामान्य विशेषात्म है, अपने स्वरूप से टिकते हैं अने पर्याय से पलटते हैं, सब सारा पदार्थ विश्व ऐसा कई द्रव्य के अंदर है। इसे जो आत्मा है उसके दो पहलू है, दो साइड है, एक सामान्य ने एक विशेष, एक ध्रुतत्व है अने एक उत्पाद एक पलटती है पर्याय। तो आचार्य महाराज फरमाते हैं कि ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव से अवस्थित होने पर भी वो तो ज्ञानमय रहता है, सामान्य स्वभाव में अज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है और अज्ञानमय भी नहीं होता है, पर्याय में अज्ञान प्रकट होता है। पर्याय में अज्ञान प्रकट होने पर भी, पर्याय में विद्या दर्शन प्रकट होने पर भी, पर्याय में दूर होने पर भी जो सामान्य ज्ञायक भाव है उसमें राग की उत्पत्ति नहीं है, उसमें दुख का भोग का प्रणाम नहीं। तो ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा एक ज्ञान स्वभाव अवस्थित होने पर भी वो तो ज्ञानमय रहता है आत्मा, त्रिका सामान्य होता, मगर कर्म से उत्पन्न होते हुए विज्ञातवादी भावों के ज्ञान के समय जब राग उत्पन्न होता है पर्याय में, उसको जानने के समय में, राग को देह को पर को जानने के समय में, ज्ञान के समय अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद ज्ञान से सुन होने से, भेद ज्ञान का अनादि काल का अभाव है, कोई संस्कार वो चालू रखता है कि जब देह ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं उस टाइम वो भूल जाते हैं कि मैं ज्ञानमय आत्मा हूं, मैं रागमय, मैं देहमय। देखो भेद ज्ञान का अभाव होने से, यानी समय समय पर भेद ज्ञान का अभाव करते जाते हैं, भेद ज्ञान नहीं करता है, एकत्र करता है। तो ज्ञान के भेद ज्ञान से शून्य होने से जो समय ये ज्ञान में प्रतिभास होता है, पुत्र पुत्री कुटुंब परिवार घर बार क्रोधमान माया लोग वो सब ज्ञेय है, ज्ञेय तो नहीं है मगर ज्ञेय तो है, ज्ञान के विषय बनते उस समय भूल जाता जब
दया दान करुणा कोमलता का परिणाम ज्ञान में प्रतिभासित हुआ। कोई समय मैंने दान दिया, मैंने लोभ किया, मैंने कसाय किया, उसमें मैं पड़ा करता है तो विशेष अपेक्षा में वो ज्ञान अज्ञान रूप बन जाता है। सामान्य ज्ञान तो सामान्य ज्ञान रूप रहता है। क्या कहा, ये बात जरूरी है समझने, समझने जैसी चीज है ये। देखो एक दृष्टांत दूं, ये जल है पानी, वो उष्ण होता है वरियाई में, तो पानी उष्ण हुआ इसे कहा जाता है, मगर पानी शीतल स्वभाव से शक्ति से भरा हुआ है वो उसका स्वभाव छोड़ता नहीं है, वो उष्ण पर्याय को करता नहीं है, पर्याय पर्याय को करता है, निमित है उस अग्नि, वो शीतल स्वभाव तो जैसा है ऐसा सुरक्षित रहता है तीनों काल। ऐसे आत्मा तीनों काल द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध रहता ही है। शुद्ध आत्म तत्व पर्याय में अशुद्धता आने पर भी वो शुद्ध तत्व अशुद्ध पर्याय को करने वाला नहीं है। भी पर्याय में अशुद्धता है वो पर्याय पर्याय को करता है, तो अभेद उपचार से आत्मा ने राग किया अशुद्धि किया ऐसा कहा जाता वो उपचार का कथन है, निश्चय का कथन हो उपचार का कथन को सत्यार्थ मान लिया, व्यवहार का कथन को परमार्थ मान लिया, अभूतार्थ कथन को भूतार्थ मान लिया, असत्यार्थ कथन को सत्यार्थ मान लिया। पर्याय में राग द्वेष होता है, बिल्कुल होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, तू तो आत्मा व्यवहार नहीं से करता है ऐसा उपचार का भी अभाव आ जाता है, तो अन्य मत सांख्य मत हो जाता है। मगर पर्याय में राग द्वेष मोह होता है, उस वक्त ज्ञान उसको जानता है राग को, मगर ज्ञान ज्ञाय की ओर झुककर मैं अकर्ता हूं वो पर्याय भूल जाती है, पर्याय अकर्ता में हम बुद्धि नहीं करती है, वो पर्याय क्रिया में हम बुद्धि करती है, तो मैं करने वाला आएगा भ्रांति पर्याय में उत्पन्न। पर्याय में भ्रांति उत्पन्न होने पर भी स्वभाव में भ्रांति आती, स्वभाव तो भ्रांति से रहित है, तो उसका अवलंबन लेने से वो भ्रांति छूट जाती है। जो स्वभाव भ्रांति में हो गया, पर्याय में दुख होने से आत्मा दुखमय हो जाता है, तो दुख का अभाव होने का प्रश्न ही होता नहीं, आत्मा सुखमय रहता है, और पर्याय दुखमय अनादिकाल से है। उस सुख नाम का जो गुण है आत्मा में, वो दुख की पर्याय का कर्ता नहीं बन सकता है। सुख गुण दुख को क्यों रचना करे, अपने को आप में दुख को क्यों रखे, दुख की रचना करना वो स्वभाव का कर्तव्य नहीं है। मगर स्वभाव का बाण नहीं है जिसको, उसको परलक्ष से उत्पन्न हुआ दुख, वो दुख मेरा है, दुख में भोगता हूँ, राग का मैं करता हूँ, विशेष अपेक्षा में भ्रांति आ जाती है। आत्मा ने भ्रांति किया, आत्मा मिथ्या दृष्टि हो गया, कहा जाता तो ऐसा है, व्यवहार का कथन तो ऐसा ही चलते, मगर जो ओरिजिनल आत्मा है, जो स्वभाव पदार्थ है,
तो कभी मिथ्या दृष्टि होता, पर्याय में मिथ्या तो आता है, तो पर्याय को अभेद उपचार से आत्मा के साथ लगाकर आत्मा मिथ्या दृष्टि हो गया ऐसा कहा जाता। सचमुच आत्मा मिथ्या दृष्टि हो सकता, मगर पर्याय में मिथ्या तो है, वो पर्याय आत्मा का परिणाम है। तो इस अपेक्षा से परिणामी को अभेद करके ये आत्मा मिथ्या दृष्टि हो गया ऐसा कहा जाता। मगर सचमुच जो सामान्य प्रकार ज्ञात है वो अशुद्ध नहीं होता है तीन काल में एक समय भी। विशेष पंथा में अशुद्धता होती है, सामान्य पंथा अशुद्ध होता सब पदार्थ का ऐसा स्वभाव है। ऐसे कर्म से उत्पन्न होने वाला राजा जी वो ज्ञानी अनादिकाल से गे और ज्ञान के भेद ज्ञान के शून्य होने से राग ये है न आत्मा उसको जानना ज्ञाता है ज्ञायक है। और ये और गायक का जुदापना का भान जिसको नहीं है उसको और को आत्मा के रूप में जानता हुआ और यानी क्रोधादि जो प्रभाव है उसको आत्मा मान लेता है और वो आत्मा लक्ष्मी से जुड़ गया है। आश्रव को आत्मा मान लिया, आत्मा जो गायक स्वभाव है वो लक्ष्मी आया नहीं, ये लक्ष्मी पर्याय आती है तो पर्याय में आत्मबुद्धि हो गई तो मैं क्रोधी हो गया, मैं मनुष्य हो गया, मैं नारकी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं पना पर्याय में आ गया। विशेष में, विशेष में विकृत होती है दशा, स्वभाव विकृत होता दिन काल एक समय की स्वभाव विकार जो है सबका हो। निबोध का जीव के अंदर निबोधिया जीव बहुत सुखी है, निबोधिया जीव बहुत सुखी है, वो केवड़ी जाने हो निबोध का जीव जाने दूसरा कोई जान सके मर दुखी होता है, दुख होता है विशेष में विशेष अंश में पर्याय में। निबोध का जीव है उसमें पर्याय में दुख है, अने उसका जो द्रव्य सामान्य आत्म तत्व है जीव तत्व वो तो उस समय सुखमय है। एक सच्चा आत्मा है एक झूठा आत्मा है, असत्यात कहे तो कोई बोला हाथ नहीं बचे, अरे झूठा कहे तो बात तो एक ही अर्थ हो, एक विद्वता की भाषा है असत्यार है, एक चारों भाषा है गांव की वो झूठा है, अर्थ तो धोखा। तो वो व्यवहार नहीं से देखने की दृष्टि हो गई अनाधिकार से, व्यवहार नहीं का विषय पर्याय उसको गौण करके, जब पर्याय में दुख है तब उसको गौण करके आत्मा की स्वरूप देखे तो वो तो सुखमय आत्मा विराजमान है, उसका अवलंबन लेते ही पर्याय में दुख का व्ययी अने सुख की प्रगता हो जाती है। और आत्मा दुखी हो गया हो तो इसका आश्रय ले गए हो छूटने का रास्ता बंद हो जाता है, भले चाहे कितना भी दुख हो पर्याय में, मगर बाजी हमारा हाथ पा है, बाजी चली गई नहीं है, क्योंकि मैं सुखमय था, एक समय दुखमय हुआ, दुखमय हुआ है आत्मा वो व्यवहार नहीं का कथन है, निश्चय नहीं कहती है कि आत्मा दुखमय हुआ नहीं है, वो निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं तो उठामा उठा इतना ज्ञान तो चाहिए, क्योंकि सामान्य विशेष आत्मा पदार्थ है वो तो दो पहलू है उसका, तो उसको जानने के लिए दो नहीं है, दो नहीं है, भेद को जानने वाली नहीं का व्यवहार नाम है, अभेद को जानने वाला ज्ञान का उसका नाम निश्चय नहीं है। तो आचार्य भगवान फरमाते वेद ज्ञान से तुम होने से पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ वो जायवा विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है। मार्मिक बात है वो जो ज्ञायक स्वभाव है वो तो वैसा क्या वैसा रह गया मगर विशेष अपेक्षा से पर्याय में विशेष अपेक्षा से पर्याय अपेक्षा से अवस्था अपेक्षा से परिणाम की अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करता है यानी ज्ञान को अज्ञान बना देता है। ये को जानने वाला है वो जानने वाला नहीं रहा और गेम में आत्मबुद्धि कर गया तो ज्ञान से रहा अज्ञान बन गया मगर अज्ञान बना आत्मा अज्ञानी बन गया मगर सचमुच अज्ञानी कौन बना है के पर्याय में अज्ञान प्रकट हुआ है। आत्मा तो ज्ञान स्वभाव अवस्थित वही समय है वो बात जानने जैसी है। व्यवहार भी से कहा जाता है कि आत्मा दुखी है मगर व्यवहार नहीं से कहा जाता है ने उपचार से करता कहा है ने प्रत्यार्थ रूप से तो कर्ता बनता नहीं है तो कर्ता बन जावे एक समय तो राग का उठना असंभव हो जाता तो पर को आत्मा के रूप में जानता हुआ वह विशेष अपेक्षा से सामान्य अपेक्षा से ज्ञायक स्वभाव ज्ञान स्वभाव अवस्थित होने पर भी विशेष अपेक्षा से विशेष में भी भूल का कारण बताया विशेष में भी मार्मिक बात है। विशेष में दो प्रकट होता है ज्ञान भी प्रकट होता है और राग भी प्रकट होता है और राग ज्ञान में जानने भी आता है और ज्ञान राग को जानता भी है मगर जानने के समय मैं ज्ञानमय हूं वो बोल गया अने राग का प्रतिभास हुआ तो मैं रागमय हूं ऐसे राग में आपको बुद्धि करता है जिसे एक दृष्टांत और दो कि दर्पण है दर्पण बॉम्बे में एक सफेद अपना बना कि एक होल के अंदर बड़ा दर्पण था दीवार पर और सामने थोड़ा अग्नि का कुंडा था उसमें ज्वाला निकलती उसका प्रतिभास दर्पण में होता था। तो उसका लड़का स्कूल से आया स्कूल से आया तो उसकी नजर दर्पण पर गई मम्मी मम्मी के दर्पण जलता है आग लग गई है अभी गर्मा आग फैल जाएगा जल्दी करो उसको बुझा दो। तो माता ने तो शांति से ठंडे कलेजे सुनता है कि क्या है बेटा अरे क्या है क्या है बात मत कर जल्दी पानी लो क्या है बात तो बता क्या हो गया कि वो जलता है दर्पण। अच्छा दर्पण जलता है तो तू ऐसा कर थोड़ा पानी लेकर छांट दे तो बुझ जाएगी। तो उसने पानी का थोड़ा लोटा लिया उतारा कि बुद्धि की आग ज्यादा है वो बम्बा चाहिए उसके लिए इतनी आग है तो मम्मी तू सारी डोल उपाड़ पानी की और तू दे आग तो बुझ जाएगी। तो अच्छा ऐसा बुझाना है तो वो तो ऐसा तो माने नहीं कि वो दर्पण ठंडा है वो तो मानता नहीं तो पानी की डोल उसको डाली ये देख वो तो जलता है तो कहा जलता है भाई जलता लिए तेरे को भ्रम हो गया अग्नि भीन है न दर्पण भीन है अग्नि की ज्वाला भीन है अग्नि की उष्णता भीन है न दर्पण की शीतलता भीन है वो माने नहीं तो क्या किया उसने કે તેરા હાથ લાવ, બાળકો કહા તેરા હાથ, મેરા હાથ નહીં તેરા હાથ લગાવ, અચ્છા મેરા હાથ લગાવ. તો ઉસને હાથ લગાયા, હું તો નિશાન થી મમ્મી તો માતાજી તો હાથ લગાયા, એક વાર દો વાર, અચ્છા થોડા ઢીલા પડા જ્ઞાન, ઓ સંબંધ કા જ્ઞાન, એક મેરી આંખ સે મેં દેખતા હું કે ઓ ઉસમે જલતા હૈ અને ઓ માતાજી હાથ એસી હૈ. અભી તેરા હાથ લાવ, મેરા હાથ નહીં, મેરા અંગુલી ધરા, મેરા અંગુલી લગાવ, અંગુલી લગાયા, અચ્છા તો ઠંડા રહેતા હૈ, અભી હાથ લગાવ, હાથ લગાયા, અરે માતાજી યે ક્યા હો ગયા, ઇસમે ક્યા હૈ રહસ્ય, કે બેટા दर्पण की स्वच्छता में अग्नि का मात्र प्रतिभास होता है, अग्नि उसमें आता नहीं है. तेरे को भ्रम हो गया कि अग्नि जलती है. ऐसे आचार्य महाराज भ्रम का भी कारण विशेष में देते हैं. सामान्य तो गाय स्वभाव है, उसमें भ्रमणा उत्पन्न होती नहीं है, उसमें भ्रमण का नाश का प्रश्न है नहीं, मगर विशेष जो पर्याय है उसका, उसमें एक ज्ञान अंश प्रकट होता है. उपयोग वो लक्षण समय समय पर जानना, जानना देखना, जानना देखना, और अनादि काल से आत्मज्ञान नहीं होने से उसकी पर्याय में विकराल भाव प्रकट नहीं होता है, अने राग प्रकट होता है. तो राग ज्ञान में, ज्ञान दर्पण में, जानने में आता है. राग है वो ज्ञेय का इसमें है, ज्ञान जानने की शक्ति है. तो राग ज्ञान में प्रतिभास होता है, वो प्रतिबिंब होता है. तो जैसे बालक भूल गया, ऐसे भूल गया कि राग मेरे में हुआ, इसे दर्पण में अग्नि आया ही नहीं, ऐसे अपने ज्ञान दर्पण स्वच्छ में राग आया ही नहीं, राग राग मा है, ज्ञान ज्ञान मा है. ऐसे होने पर भी जब देहादि और राग आदि ज्ञान में प्रतिपात होता है, तब उसका लक्ष्य ज्ञायक पर नहीं है, उसका लक्ष्य राग पर है. तो राग का प्रतिवाद देकर मैं रागी, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मनुष्य, मैं देव, मैं नारकी, मैं पणा करता.